और नियम सार में एक गाथा आती है, सव्वे शुद्ध सिद्ध समाणा शुद्ध नया संसिधि जीवा, संस्कृतो जीवा सर्वे सिद्ध समाना शुद्ध नयात। माने शुद्ध नय की अपेक्षा संसार में जितने जीव हैं वो सब सिद्ध भगवान के समान हैं। तो शुद्ध नय सिर्फ द्रव्यार्थिक नय होता है ये नहीं, यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है कि पर्यायार्थिक नय भी शुद्ध हो सकता है। तो उस शुद्ध पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से कौन सा शुद्ध पर्यायार्थिक नय? कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से संसारी जीवों की पर्याय भी द्रव्य नहीं। अब क्या है कि एक विवाद ये चलता है कि द्रव्य सदा शुद्ध रहता है, पर्याय अशुद्ध होती है। यहां तो कह रहे हैं कि पर्याय शुद्ध होती है उस नय से। ये है कि नहीं अद्भुत जानकारी? ये वैसे हमें, हम सोच रहे थे कि ये चीज कभी निकले तो फिर ये जानकारी आपको दी जाए, ये एकदम भाग्य संयोग से एकदम आज निकल आई है। नहीं तो टीका पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि अपना मूल स्वाध्याय चल रहा था। टीका का तो अपन सहारा ले रहे हैं, जहां जहां थोड़ा सा विषय खोलने की अपेक्षा होती है वहां पर अपन टीका का सहारा ले रहे। और बहुत विनयपूर्वक आचार्य शुभचंद स्वामी को प्रणाम करते हुए, तो ये एक बहुत अद्भुत बात लिखी इसमें। और इसीलिए जिनेन्द्र वर्णी जी ने आचार्य शुभचंद स्वामी को गुरु माना है। नहीं ये वाले ये अलग हैं, ज्ञानानंद वाले आचार्य शुभचंद्र स्वामी अलग हैं और ये शुभचंद्र स्वामी अलग हैं। ये टीकाकार जो है कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के, ये भिन्न है। ज्ञानानंद वाले पुराने हुए हैं, वो लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास का समय है और इनका समय बाद का है। ये लगभग हो सकता है 400 वर्ष पुराने हो। यहाँ ईडर के जो परंपरा है ना, उसी के है आचार्य शुभचंद्र स्वामी। सकल कीर्ति आचार्य जी की जो परंपरा है उसी के हैं और काफी शुद्ध परंपरा है वो। इसमें कोई ऐसा नहीं है, कई लोगों के ऐसा आक्षेप रहता ना कि भट्टारक जो थे वो तो ब्राह्मणों का समर्थन करने वाले थे और ऐसे थे वैसे थे। इतना जल्दी में क्या है कि जिसको अपन ने देखा ही नहीं उसके बारे में इतनी सारी जानकारी आप बिना सोचे समझे देने लग जाओ, ये उचित नहीं। अब इस टीका को देखो ना, इस टीका में जिनेन्द्र वर्णी जी जैसे जिनको गुरु मान रहे हैं ये साधारण नहीं हो सकते। हाँ, इन्हीं को कहा नए दर्पण के शुरू में उनने जो समर्पण दिया है उसको आप पढ़ो तो फिर बिल्कुल स्पष्ट होता है। क्योंकि ये जो भेद किए हैं नए के, ये पर्यायार्थिक नय से आज अपनी सिद्ध भगवान जैसी पर्याय है, ये बात मतलब कहां से समझ में आ सकती बताओ किसी के? ये अगर आप किसी से भी पूछो ये बताए बिना ग्रंथ का नाम तो वो बोलेगा कि नहीं मिथ्या है बात, और फिर दिखा दो आप ग्रंथ तो फिर एकदम तार झंझना जाए दिमाग के। अरे ये बात है, ये खास, सबसे खास हम यही बतलाना चाह रहे थे आपको। कौन से नंबर पर? 5वें नंबर पर। कर्मोपाधि निरपेक्ष, कर्मोपाधि बिल्कुल विशेषण में से एक शब्द भी आप गोल नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि नहीं हम अभी सिद्ध भगवान जैसे शुद्ध है, फिर वही समस्या आएगी बेदी पर बैठने वाली। तो फिर अब उसमें पहले आचार्य महाराज ने कितना सुंदर समाधान दिया है आत्मा के बारे में, अलग अलग नयों से कितना सुंदर विवेचन था। पहले कहा कि अगर अनादि से जीव शुद्ध है तो फिर संसार में क्यों भटक रहा है, कर्मों का बंध क्यों बांध रहा है, सुखी क्यों हो रहा है, दुखी क्यों हो रहा है, ये सारे प्रश्न किए उन्होंने। तो बोले कि सर्वथा शुद्ध तो सिद्ध भगवान ही है, लेकिन ये देखिए नए विवक्षा से लगाओ तो फिर इस पर्यायार्थिक नए से आज भी संसारी जीव शुद्ध पर्यायों वाला है, शुद्ध पर्यायों वाला। कौन से नए की अपेक्षा? कर्मोपाधि निरपेक्ष, क्योंकि कर्म की उपाधि जहां आएगी सापेक्ष करोगे तो फिर शुद्ध हो ही नहीं सकता। आज बिल्कुल घोर संसारी जीव है, और फिर कर्मों को हटा करके देखो कौन सी पर्याय है, पर्यायार्थिक नय है। कर्मों को हटा करके देखो तो संसारी जीव भी सिद्ध जैसी पर्याय वाली है, ये बात है। तो कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय, इसको आप लिख करके फिर घर जाकर के एक बार और रट लेना। क्योंकि ये अनमोल चीज हो सकता है अगले जन्म में आपको साथ दे, और फिर जब कभी आप भविष्य में अगर भाग्य योग ऐसा बने कि समव शरण में जिनेंद्र भगवान का सानिध्य प्राप्त करो, तो फिर ऐसे कुछ खजाने यहां से लेकर के जाओ तो आपको और बहुमान जागृत होगा वहां कि ये आज भी संसारी जीव सिद्ध भगवान के समान पर्याय वाला है। कितना अद्भुत मतलब नयों का विस्तार है जैन आगम में, ये कहां मिलने वाली बात है, अनमोल बात है। ये समझ लो कि आज का दिन जीवन का एक विशेष दिन, इतना बहुमान आना चाहिए। ये इसको बहुमान आचार में क्या बताया कि स्वाध्याय करते समय अंदर से ऐसी संवेदना होनी चाहिए कि मैं साक्षात जिनेंद्र भगवान के वचन आज मेरे ये जीवन की धन्य घड़ी है। ये समझना चाहिए कि ये सुबह नहाते समय जो टाइम निकल गया निकल गया, ब्रश करते समय निकल गया निकल गया, चाय पीते समय निकल गया निकल गया, अखबार पढ़ते समय निकल गया निकल गया, कपड़े पहनते समय निकल गया, सारे दुनिया के काम किए 24 घंटे में, लेकिन ये जो समय है जिस समय ये जिनेंद्र भगवान के वचन अपने कानों में पड़ रहे हैं और हृदय में बहुमान उत्पन्न हो रहा है, उस बहुमान के साथ स्वाध्याय करना, ये बहुमान आचार्य अत्यंत सम्मान की। अरे दिव्य ध्वनि का ये उतना हिस्सा मेरे महान सौभाग्य से मुझे मिल रहा है, पर्याय आर्थिक नहीं कि ये भेद, इसको तो अलौकिक के सिवाय कोई दूसरा शब्द नहीं है, अलौकिक बात है। कर्मोपाधि सापेक्ष, अब देखिए, और छठा भेद जो पर्याय आर्थिक नहीं का वही है, कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभाव नित्य स्वभावानित्य। देखो आ की मात्रा ले ली, एक मात्रा अगर छूट जाए तो कबाड़ा हो जाए। क्या लिखा है उसमें, क्या लिखा था पहले, स्वभाव नित्य लिखा था पिछले में, और यहां कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभावानित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक। कर्मोपाधि से सापेक्ष माने उसकी अपेक्षा रखने वाली, जो स्वभाव से अनित्य है, ऐसा अशुद्ध पर्याय को ग्रहण करने वाला अशुद्ध पर्यायार्थिक न है। यथा जैसे संसारिणाम उत्पत्ति मरणे स्तः, संसारी जीवों का जन्म और मरण होता है। ये जो दृष्टांत है संसारी जीवों का जन्म मरण होता है, ये अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का कथन है। अब देखो पर्यायार्थिक नय से जब तक इतने भेद स्पष्ट समझ में ना आए तो फिर अपन कितना बारीक जा पाएंगे। ये है बारीकी, बाल की खाल निकालना जिसको बोलते ना, वो इसका नाम है। और पर्यायार्थिक के जो छह भेद अपन ने कल देखे थे उसमें पहला क्या था, अनादि नित्य पर्यायार्थिक। अनादि नित्य पर्यायार्थिक कैसा है कि कोई ऐसी पर्याय जो अनादि से है और नित्य रहेगी, जैसे मेरु पर्वत आदि, गंगा नदी आदि, अनादि निधन। फिर सादि नित्य पर्यायार्थिक सिद्ध पर्याय। उसके बाद सत्ता गौणत्व, सत्ता को गौण करके उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला जो स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक ने है, जैसे एक एक समय में पर्याय नष्ट होती हैं, ये तीसरा पर्यायार्थिक हो गया। फिर सत्ता सापेक्ष, सत्ता को सापेक्ष करने वाला स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, जैसे एकस्मिन समय त्रयात्मक का पर्याय, एक समय में पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य तीन रूप होती है। फिर कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, कर्मोपाधि से निरपेक्ष जो स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक ने, यथा सिद्ध पर्याय सदृशा शुद्धा संसारणाम पर्याय, जैसे सिद्ध पर्यायों के समान शुद्ध संसारी जीवों की पर्याय होती है। और आखिरी वाला जो था कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, कर्मोपाधि को सापेक्ष करने वाला जो स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक ने, यथा संसारणाम उत्पत्ति मरणे स्तः अशुद्ध पर्यायार्थिक, है ना, स्वभावानित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक, स्वभाव अनित्य, अनित्य लगाना और फिर अशुद्ध, उस पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा संसारी जीवों का जन्म और मरण होता है। इति पर्यायार्थिकस्य षट वेद, ऐसे पर्यायार्थिक के छह वेद है। अब इसके आगे बाकी नयों का वर्णन, जो सात भेद किए हैं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकों के। ये तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के आध्यात्मिक दृष्टि से अलग प्रकार के भेद, फिर आगम में जो भेद है उसको अभी आगे गिना रहे हैं। आगम में कितने भेद हैं नयों के, सात, मूल भेद सात है, फिर उसके प्रभेद और ज्यादा हो जाएंगे। तो उन सात नयों में तीन द्रव्यार्थिक है, नयगम संग्रह व्यवहार, और चार ऋजुसूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं भूत, ये बाकी चार नए जो है वो पर्यायार्थिक। जो साहे इदि अदीदम वियप्रूवम भविस्समट्ठंच संपटिकाला विट्ठम सोहुनौ निगमो नेयो। जो अतीत को और भविष्यम भविष्य को वियप रूपम सिर्फ विकल्प संकल्प ग्रहण करके, अट्ठम संपड़ी काल अट्ठम साहदी, वर्तमान काल में स्थित के समान साधता है, सोहुनौ निगमो नेयो, उस नये को नैगम जानना चाहिए। यानी भूत भविष्य की कोई बात को लेकर के जो वर्तमान में उसकी बात करता है संकल्प की अपेक्षा से, तो उसको नैगम नय कहते हैं। इसका खुलासा इसमें आया था तत्वार्थ में, जैसे इसमें जो भेद बता रहे हैं वो ऐसे हैं, दृष्टांत है नहीं जी। यथा अद्य दीपोत्सव दिने, आज दीपावली के दिन, वैसे कल दशहरा का दिन था लेकिन इसमें आज दीपावली का दिन दृष्टांत में आ रहा है। वर्धमान स्वामी मोक्षं गतः, वर्धमान स्वामी मोक्ष गए, आज के दिन वर्धमान स्वामी मोक्ष गए। अब क्या है, वर्धमान स्वामी बहुत पहले गए थे मोक्ष, लेकिन फिर भी नैगम ने क्या कहता है कि आज के दिन में वो संकल्प करके उसका स्मरण करके भूतकाल की घटना को आज बतलाता है। तिथि है ना वही, महावीर भगवान कब मोक्ष गए थे आपको ख्याल है ना, चतुर्दशी को। निर्वाण भक्ति की अंचलिका में आया कि महावीर स्वामी चतुर्दशी को मोक्ष गए थे, लेकिन त्योहार कब मनाया, अमावस्या। वो तो है ही, क्योंकि चतुर्दशी के अंत में मोक्ष जाएंगे तो फिर वो तो चतुर्दशी समाप्त हो गई, अब मनाओगे तो बाद में ही मनाओगे, तो फिर वो एक तिथि बन गई निर्वाण कल्याणक की। तो अद्य दीपोत्सव दिने वर्धमान स्वामी मोक्षं गतः, आज दीपावली के दिन वर्धमान स्वामी मोक्ष को गए। च पुनः, और देखिए, भविष्यंतमर्थम अतीतवत् कथनम भाविनी भूतवत् कथनम भाविने गमः। जो भविष्य का कोई विषय है उसको हो चुका इस प्रकार बतलाता है, वो भावी नैगम कहलाता है। ये पहला जो था भूत नैगम हो गया, ये भावी नैगम हो गया। यथा जैसे अरहन सिद्ध एव, अरहत भगवान सिद्ध ही है, ये कह दिया। सिद्ध ही है मतलब अब होना ही है सिद्ध, इसलिए बोले सिद्ध ही है वो। तो जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ने जाता है, अब तो डॉक्टरी बन गया, डॉक्टर हो तो बन गया, ये इस प्रकार इशारा करते ना, मतलब जो काम चालू हो चुका है, संकल्पित हो गया वो, तो उसको हो चुका इस रूप में बताने वाला ये भावी नैगम होता है। जैसे अरहंत भगवान क्या होंगे, अब आगे कोई और भविष्य है क्या उनका, सिद्ध अवस्था के सिवाय और कुछ है क्या अरहंत भगवान के भविष्य में, तो बस कह दिया कि अरहंत सिद्ध ही है, ये जो कथन है ये भावी नैगम कहलाता है। फिर संप्रति कालाविष्टम वस्तु इदानीम वर्तमान कालाविष्टम पदार्थम साधयति स वर्तमान नैगम। और तीसरा भी भेद है कि वर्तमान नैगम, जैसे कर्तुम आरब्धम ईशन निष्पन्नम अनिष्पन्नम वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते स वर्तमान नैगम, यथा ओदनम पच्यते, भात पक रहा है, भात पक रहा है या चावल पक रहा है, आटा पिस रहा है, आटा पिस रहा है या गेहूं पिस रहा है, तो ये वर्तमान नैगम का कथन है। कोई काम चल रहा है तो फिर उसकी पूर्ति के रूप में उसको बता देता है। तो भूत नैगम क्या हो गया, किसी पुरानी बात को लेकर आज वैसा ही कथन करना, भूत नैगम। भावी नैगम क्या हो गया, किसी भविष्य की बात को वर्तमान में हो चुका है वैसे बतलाना, और वर्तमान निगम जो वर्तमान में काम चल रहा है अभी अधूरा है तो उसको कहना कि ये काम है। और तीनों की दृष्टांत दे दिए। भूत निगम का दृष्टांत क्या था? भगवान महावीर आज मोक्ष गए, आज, ये आज जो शब्द था, आज तो नहीं गए मोक्ष, गए तो बहुत पहले, लेकिन आज ये शब्द कहना ये भूत निगम की अपेक्षा है। और भावी निगम में क्या होता है? भावी निगम में कोई भविष्य की घटना को आज बताना, जैसे अरहंत सिद्ध ही है, वो जो मेडिकल में पढ़ रहा है वो डॉक्टर ही है, अभी पढ़ रहा है, लेकिन उसको आगे की बात को लेकर के अभी घोषित कर देना। वो तो मंत्री बन गया, अभी चुनाव होने वाले हैं, बन ही गया वो, तो समझ लो तो लगा लेते हैं फिर समझाने के लिए, लेकिन अब तो वो उसके माहौल देख करके बोल देते हैं कि ये तो पक्का ही है मंत्री, तो मंत्री अभी नहीं है, लेकिन वातावरण देख करके समझ में आ जाता है कि ये ही होने वाला है। तो होने वाली घटना को हो चुकी है इस रूप में बताने वाला जो नए है वो भावी निगम है, और वर्तमान निगम जो है वो जो कोई घटना वर्तमान में चल रही है उसको पूर्ण हुई के समान बताना। जैसे भात पक रहा है, आटा पिस रहा है, कहाँ जा रहे हो? आटा पिसाने, गेहूं पिसाने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि आटा आने वाला है इसलिए ऐसा कह देते। क्या पका रहे हैं? भात पका रहे हैं। भात पका रहे हैं या चावल पका रहे हैं? तो फिर वैसे ही कथन होता है। तो ये नए दृष्टि से गलत नहीं है। नहीं, वो समझने के लिए है ये सब बातें। तीन प्रकार के निगम ने बता दिए। तावत तथा ही, और भी उसका खुलासा कर रहे हैं। कश्चित पुमान करकृत कुठारो वनं गच्छति, कोई व्यक्ति हाथ में कुलाड़ी लेकर जंगल जा रहा है, तन निरीक्षको भी पृच्छति, ये दृष्टांत सर्वार्थ सिद्धि में था ना, कि उसको देखकर कोई प्रश्न करता है, तुम किमर्थम व्रजसि, तुम किस लिए जा रहे हो जंगल? सब प्रोवाच, बहुत अच्छे से जवाब देता है, हम प्रस्थ माने तुम गच्छामि, मैं प्रस्थ लाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने लकड़ी से कोई एक ऐसा कुछ बनता है, एक आकार विशेष, कि जिसमें नाप तौल जिसको बोलते हैं ना, तो उसी नाप तौल की श्रेणी का एक आकार लकड़ी से बनाया जाता है, तो उसको प्रस्थ कहा जाता है, एक निश्चित माप है वो। तो बोलता है कि मैं प्रस्थ लाने जा रहा हूँ। इत्युक्ते तस्मिन काले, ऐसा कहने पर उस काल में प्रस्थ पर्याय समीपे न वर्तते, वो पर्याय तो है नहीं उसके पास। क्या नहीं है? जिसका नाम ले रहा है वो उसके पास नहीं है। प्रस्थो घटयित्वा धृतो न वर्तते, वो लकड़ी को काट करके वैसा आकार बनाकर अभी वर्तमान में उसने प्रस्थ नहीं बनाया है। किन तरी तद अभी निवृत्तये प्रस्थ निष्पत्ते संकल्प मात्र, फिर इस समय क्या है उसके पास? उसके पास संकल्प है। क्या संकल्प है? कि जंगल से लकड़ी लाऊंगा, लकड़ी लाकर उसकी छिलाई करूंगा, छिलाई करके फिर प्रस्थ बनाऊंगा। तो प्रस्थ का संकल्प होने के कारण काष्ठानयने प्रस्थ व्यवहारो भवती, लकड़ी लाने में भी वो वही व्यवहार होता है, प्रस्थ का व्यवहार होता है। कहां जा रहे हो? मंदिर जा रहे हैं, अभी तो नहाने जा रहा है, नहाने जा रहा है, लेकिन वैसा व्यवहार होता है संकल्प होने के कारण। एवं इंधन जलानलाद्यानयने कश्चित पुमान व्याप्रियमाणो वर्तते, इसी प्रकार ईंधन है, पानी है, और सब ऐसी सामग्री को जुटा करके कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सकेन चित पृष्ठ, उसको किसी ने पूछा, किं करोषि त्वमिति, तुम क्या कर रहे हो? तेन उच्यते, वो कहता है, हाँ मोदनम पचामि, मैं भात पका रहा हूं, अभी तो गैस जला रहा था, या फिर लकड़ी वगैरह से कुछ चूल्हा जला रहा था, मैं भात पका रहा हूं। न च तस्मिन प्रस्तावे, उस प्रसंग में ओदन पर्याय मतलब भात नहीं है, अनिष्पन्नोस्ति बना ही नहीं है भात, किंतरी ओदन पचनार्थम व्यापारोपी, फिर क्या है उस समय? तो बोले कि भात पकाने के लिए वो प्रवृत्ति कर रहा है, तो ओदन पचन मुच्चित, उस प्रवृत्ति को भी भात पकाना कहते हैं, इसलिए वो गलत नहीं है। एवं विदो लोक व्यवहार अनिष्पन्नार्थ, इस प्रकार का लोक व्यवहार चलता रहता है। अपूर्ण संकल्प मात्र विषय, संकल्प मात्र को विषय करने वाला वर्तमान नैगमस्य गोचरो भवति इत्यर्थ, वर्तमान नैगम का विषय बन जाता है, ये इसका तात्पर्य। जो संगहेदि सर्वम देशम वा विविहदव पज्जायम अणुगम लिंग विसिठम सो विनो संगहो होदि। जो सबम संगहेदि, जो सबका संग्रह करता है, देशम वा विविध द्रव्य पर्याय अथवा विविध द्रव्य पर्यायों के, देशम माने एक देश का संग्रह करता है, अनुगम लिंग विशिष्ट विशिष्टम यानी जानने के जो लिंग यानी चिन्ह से विशिष्ट पदार्थ हैं उनका संग्रह करता है, सो भी न हो संगहो होदि, वही न संग्रह न होता है। इस पर से ये जो नयों का वर्णन है इसमें इतना सुंदर वर्णन है, जिनेंद्र वर्णी जी ने एक नए दर्पण नाम की पुस्तक लिखी है, इतनी मोटी पुस्तक है इस पर से, और उसमें इतना अच्छा समाधान हो जाता है नयों के द्वारा सबका कि फिर भ्रम नहीं रहता। खींचाता नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, कहीं भी खींचाता नहीं करने से नुकसान, नय है किस लिए? खींचने के लिए तो है नहीं, नय तो सिर्फ पदार्थ के एक अपेक्षाकृत स्वरूप को जानने के लिए, वो पदार्थ का पूर्ण स्वरूप तो है नहीं। अब जैसे पर्यायार्थिक नय का वो भेद ले लो आप, शुद्ध पर्यायार्थिक जो है शुद्ध पर्याय को ग्रहण करने वाला, और फिर उसको द्रव्यार्थिक के भी उस भेद को ले लो, तो उससे क्या आत्मा का हित होगा, क्या कल्याण होगा उससे? जब तक दसों द्रव्यार्थिक और छहों पर्यायार्थिक नयों को आप सही नहीं समझते तब तक आपका पुरुषार्थ सही नहीं हो सकता। संग्रह ने सबको संग्रहित करता है, ये सब विषय अपने सर्वार्थ सिद्धि में देखा है। जो संगहीन गहिदम विशेष रहिदम पि भेद दे सददम परमाणु पज्जन्तम व्यवहारणौ हवे सोदु। संगहीन गहिदम जम, संग्रह द्वारा ग्रहण किया गया जो पदार्थ है वो कैसा है? विशेष रहिदम, भेद प्रभेद से रहित है एकदम, संग्रह में तो सब इकट्ठा है, भेद प्रभेद नहीं है, तो उसको सददम भेद दे परमाणु पर्यन्तम, उसको निरंतर भेद प्राप्त कराता जाता है, ऐसे इकट्ठे हो गए पदार्थ तो उसमें से भेद करता जाता है, भेद करता जाता है, भेद करता जाता है, कहाँ तक? तो अगर पुद्गल द्रव्य तो परमाणु तक के भेद कर डालता है। सो हु व्यवहार न हवे, वही व्यवहार न होता है, भेद करने वाला न व्यवहार न है। जो वर्तमान काले अथ पज्जाय परिणदम अथम, एक अक्षर कम हो रहा है, नीचे दिया है ब्रैकेट्स में अथम पज्जाय, एक मात्रा कम हो रही थी, अथम पज्जाय परिणदम अथम, वो 17 मात्रा आ रही थी ना, आपको ऐसा लगता होगा कि हम कैसे गिन लेते हैं, वो सिर्फ अभ्यास की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं काम, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब टीचर मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे बोर्ड पर, तो हम लोग बहुत आश्चर्य में पड़ जाते थे कि क्या तेज दिमाग है इनका। लेकिन वो प्रैक्टिस का खेल होता है, प्रैक्टिस कर लो तो हो जाता है। अथम पज्जाय परिणतम अथम, टिप्पण में अथम पज्जाय दिया, संतम साहदिसव्वम तंपिनयम उज्जुयम जान। जो वर्तमान काल में अर्थ पर्याय रूप परिणत पदार्थ को, अर्थ पर्याय बहुत सूक्ष्म होती है, अपने ज्ञान का विषय नहीं बनती, वो केवल ज्ञान गोचर होती, एक एक समयवर्ती जो सूक्ष्म पर्याय होती रहती है अपने अंदर, वो अर्थ पर्याय है। उस रूप परिणत अथम यानी पदार्थ को संतम, संतम यानी विद्यमान, सबवम साहदी, जो विद्यमान है उसको सारा का सारा साधता है यानी ग्रहण करता है, तम पिणयम उज्जुयम जान, उस नय को ऋजुसूत्र नय जानो, सव्वे सिंवत्थूणम संखालिंगादि बहुपयारेहिं। जो साहदिनाणत्तम सद्दनयम तम वियाणेह, सभी वस्तुओं की संख्या लिंग आदि बहुत प्रकार हैं, उनके माध्यम से नानत्तम साहदी, सब वस्तुओं में नानापन अर्थात भेद रूपता, जो साहदी जो साधता है, तम सद्दनयम वियाणेह, उसको हे भव्य जीवों तुम शब्द न जानो। मतलब ये हुआ कि सब वस्तुओं में संख्या होती है कुछ एक दो आदि, फिर लिंग होते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग आदि, फिर वचन भी होते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन, संख्या में आ जाएंगे वचन, फिर पद होते हैं आत्मनेपद परस्मेपद, कारक होते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनकी अपेक्षा से जो सब पदार्थों में भेद सिद्ध करता है वो शब्द नय है। वो व्याकरण के किसी दोष को स्वीकार नहीं करता, बोलचाल की भाषा अलग है और व्याकरण की शुद्धता अलग होती है, तो वहां पर वो शुद्ध व्याकरण की ही बात को ग्रहण करता है, ऐसा नय शब्द नय है। जो एगेगम अथम परिणति भेदेन साहदेनाणम मुखत्थम वा भासदि अहिरूढ़म तन्नयम जान। जो एक एक पदार्थ को परिणति के भेद से साधता है, मुखत्थम वा भासदि, ज्ञान जो है उसकी परिणति के भेद से एक एक पदार्थ को साधता है, लेकिन मुख्यतम भासदि, जो मुख्य पदार्थ है उसको भाषा में लाता कहता है, तम नयम, उस नय को अहिरूढ़म जान, अभिरूढ़ नय जानना, समभिरूढ़, यथा एकोपि पुलोमजा प्राणवल्लभ परमेश्वर्य रुक्त इंद्र उच्यते। जैसे एक इंद्र है, उसको पुलोमजा का प्राणवल्लभ यानी इंद्राणी का प्राणवल्लभ और परम ऐश्वर्य से युक्त इंद्र कहा जाता है, स अन्य है, वो अन्य है, और शकनात चक्र सोपी अन्य है, और शकनात माने जम्बूदीप को पलट सकने की शक्ति होने के कारण वो शक्र कहलाता है, वो अलग है, और पुरदारणात् पुरंदरः, और अयोध्या आदि नगरों की रचना करने के कारण, जैसे दारण का अर्थ होता है नष्ट करना तोड़ना फोड़ना, तो क्या होता है कि अयोध्या नगरी पहले जो होती है वो अलग होती है, और जब तीर्थंकर जन्म लेने वाले होते हैं तब वो पुरानी व्यवस्था को इंद्र पूरा समाप्त करा करके एकदम नई व्यवस्था कराता है। तो इसलिए पुरंदर बोलते हैं इंद्र को, सोपी अन्य वो भी अलग है इत्यादि शब्द भेदात एकस्यापि अर्थस्य अनेकत्व मन्यते। शब्द के भेद से एक ही पदार्थ में अनेक रूपता स्वीकार करता है। तत् समभिरूढस्य लक्षणम्, वो समभिरूढ़ की पहचान होगी, समभिरूढ़ का स्वरूप हो गया। यानी समभिरूढ़ जो होता है वो शक्र उसको कहेगा जो जम्बूदीप को पलट सकने की ताकत रखता है, उसका उस दृष्टि से उसको शक्र कहेगा। फिर इंद्र उसको कहेगा कि जो इंद्राणी के साथ बैठा हुआ है, अगर अकेला कहीं जा रहा है ऐरा कहीं घूम रहा है तो फिर उसको इंद्र नहीं कहेगा, इंद्राणी के साथ हो तो इंद्र कहे। और पूर्वधारणात माने नगरी की जब रचना करता है, अयोध्या वाराणसी है जहां जहां तीर्थंकर हुए ना चंपापुरी वगैरह, तो उसको जब वो इंद्र व्यवस्थित कराता है तब उसको पुरंदर कहते हैं। तो इस प्रकार शब्द भेद में वो जो रूढ़ हो जाता है अर्थ उस रूप में लेता है। और फिर गाय, अब गो गो शब्द जो है उसका अर्थ व्याकरण में होता है जो चले सो गो, लेकिन किसी एक विशेष प्राणी के लिए वो शब्द रूढ़ हो जाता है। गौ बैठी हो तो भी गौ है, वो गाय है। जीर्ण सहावेण जदा परिणत रूपम तमय तादो तम परिणाम साहदी जो विनो सोहु परमत्थो। वो परमार्थ नय अर्थात एवं भूत नय है। तो जिस स्वभाव से जिस समय परिणति रूप वो द्रव्य उस पर्याय में तन्मय है उस परिणाम को सिद्ध करता है। पुजारी पूजा कर रहा है तभी पुजारी है, ये एवं भूत नय। एवं विविहनैहि जो वत्थुं व्यवहरे दिलोयं मे दंसनणान चरितं सोसाहदि सग्गमुखं च। बहुत सुंदर गाथा है कि एवं विविह नहीं है, इस प्रकार अनेक नयों से जो लोक में वत्थुं व्यवहरे दि, जो लोक में वस्तु का अर्थात पदार्थ का तत्व का व्यवहार करता है, सो दंसन नाण चरितम साहदी वही रत्नत्रय को साध सकता है। एक नए को पकड़ने वाला रत्नत्रय के धारी नहीं हो सकता, वो रत्नत्रय को साधता है। और सग मुखम च साहदी स्वर्ग और मोक्ष को भी सिद्ध कर लेता है। फिर ये बहुत ही सुंदर गाथा भी, ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की एक विशिष्ट गाथा है। जैसे पांच परमागम जिसको कहते हैं ना आचार्य कुंदकुंद स्वामी के, समय सार प्रवचन सार पंचास्तिका है अष्टपहोड़ नियम सार, उन पांचों में एक गाथा आती है, पांचों में समान। आपने पता किया था कि नहीं, पूछा था किसी से? होमवर्क नहीं करते आप लोग हैं खैर आप पूछ लेना कोई जो उस उन ग्रंथों के स्वाध्याय में रुचि रखने वाले जो आपके परिचय में होंगे। सबके तो नहीं, सब लोग तो संपर्क में रहते नहीं, लेकिन जो आसपास हैं संपर्क वाले हैं वो पता करो कि ऐसी कौन सी गाथा है। ये गाथा भी बहुत विशिष्ट है कार्तिकेय अनुप्रेक्षण। विरलाणि सुनहि तच्चम विरला जानन्ति तच्च दो तच्चम विरला भावहि तच्चम विरलाणं धारणा होदी। बिरले जीव तत्व का उपदेश सुनते हैं। बिरले का मतलब थोड़े इने गिने, और बिरले जीव तच्छदो तच्छम जानन्ति यथार्थ रूप से उस तत्व को पहचानते हैं। सुनते ही कम है और उनसे भी कम लोग तत्व को सही पहचानते हैं, और बिरला भाव ही तच्चुम, और उनमें भी पहचानने वालों में भी बिरले ऐसे होते हैं इन्हें गिने जो भाव ही तच्चुम तत्व की भावना भाते हैं, और बिरलाणम धारणा होती, और उनसे भी बिरले ऐसे होते हैं जो उसको जमा लेते हैं, यानी धारणा रूप ज्ञान में उसको प्रतिष्ठित कर देते हैं तत्व को, वो और कम होते हैं। इसकी टीका बड़ी सुंदर है, अपन देख लेते हैं। विरला स्वल्पा केचन तत्व वेत्तार सावधाना संत पुरुषा तत्व जीवादि तत्व स्वरूपम अतिशयन शृण्वंती समाकर्णयंती। बहुत कम, कुछ थोड़े लोग तत्व को समझने वाले सावधान होकर तत्व अर्थात जीवादि तत्व के स्वरूप को अतिशयन शृण्वंती खूब अच्छे ढंग से श्रवण करते हैं, सुनते हैं। पुनः और तत्वत परमार्थतः यथार्थ रूप से परमार्थ बुद्ध्या कर्मक्षय बुद्ध्या वा अथवा तच्छदो का अर्थ कर्मक्षय की भावना से विरला स्वल्पतरा बहुत कम लोग सम्यक बोधम मयांत करना सम्यक ज्ञान में है अंतःकरण जिनका यानी जिनके मन में सम्यक ज्ञान है ऐसे केचन नरा तत्व जीवादि पदार्थ स्वरूप जानन्ति विदन्ति। कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो जीवादि पदार्थों के स्वरूप को जानते हैं पहचानते हैं। पूर्वम तत्व स्वरूप श्रुत्वा पश्चात तत्जाना जानन्ति इत्यर्थ पहले तो सुनते हैं और उसके बाद उसको पहचानते हैं। क्रम बता दिया, पहले सुनना और उसके बाद समझना, फिर इसके आगे पुनः और बिरला स्वल्पतराणा मध्य स्वल्पतरा कम में भी कम तुच्छा पुरुषा पंचशा थोड़े से पांच छह सम्यक दृष्टे सम्यक दृष्टि तत्व जीवादि स्वरूप भावयंती तत्व जो जीवादि के स्वरूप है उनको भाते हैं भावना विषयी कुर्वन्ति भावना का विषय बनाते हैं। स्वतत्व परतत्व श्रुत्वा स्वतत्व और परतत्व को सुनकर ज्ञात्वा च और जानकर पुद्गलादिकम त्यक्त्वा पुद्गलादिक को छोड़कर स्वस्वरूपम शुद्ध स्वरूपम स्वतत्वम अपने स्वरूप को शुद्ध स्वरूप को स्वतत्व को अर्हतादि परतत्वम वा और अथवा अर्हंतादिक परतत्व को ध्यायन्ति चिंतयन्ति इत्यर्थ ध्यान में लाते हैं उसका चिंतन करते हैं, ये इसका तात्पर्य। उक्तम च कहा भी है, श्लोक है, विद्यन्ते कतिनात्मबोध विमुखाः संदेहिनो देहिनः प्राप्यन्ते कतिचित् कदाचन पुनर् जिज्ञासमानाः क्वचित् आत्मज्ञाः परमप्रमोद सुखिनः प्रोन्मीलदन्तर्दृशो वित्राः स्युर्बहवो यदि त्रिचतुरास्ते पञ्चशा दुर्लभाः। अब इसमें पहली पंक्ति में कह रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान से विमुख और अपने मन में आत्मा है या नहीं ऐसा संदेह रखने वाले कति देही न विद्यन्ते कितने ही प्राणी नहीं पाए जाते, अवश्य पाए जाते हैं। यानी आत्मा के बारे में संदेह रखने वाले और आत्मा को जानने से भी जो विमुख है, नहीं हमें नहीं जानना भी, हमें अपना काम करने दो, तुम्हें जानना तुम करते रहो जो करना उसे, हमें इसमें कोई रुचि नहीं, ऐसे कितने ही लोग नहीं पाए जाते, अवश्य पाए जाते हैं। फिर दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं विद्यन्ते प्राप्यन्ते कतिचित कुछ ऐसे भी प्राप्त हो जाते हैं लेकिन कब प्राप्त होते हैं, कदाचन किसी समय, कभी कभी कुछ ऐसे भी प्राप्त होते हैं और कहाँ प्राप्त होते हैं, क्वचित कहीं कहीं, कहीं कहीं कभी कभी कुछ कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो जिज्ञास माना है आत्मा को जानने की उत्कंठा रखते हैं। आत्मा से विमुख लोग तो हमेशा हर जगह मिलते हैं, जो संदेह रखते हैं कि है या नहीं ऐसे तो हर जगह मिलेंगे लोग, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं कुछ कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आत्मा को जानने की उत्कंठा रखते हैं। और फिर तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं आत्मज्ञा, आत्मा को जानने वाले, प्रोन्मीलद अंतर्दृश्य, जिनकी अंतर्दृष्टि खुल चुकी है, और परम प्रमोद सुखिना, परमानंद से जो सुखी हो गए हैं ऐसे जीव द्वित्रास्युर। बोले दो तीन ही होते हैं, दो तीन माने कितने मनुष्य हैं संसार में। और फिर बोलते हैं कि ऐसे जीव जो आत्मा के आनंद से आनंदित हैं और जिनकी अंतर्दृष्टियां खुली हुई हैं, वे दो या तीन होते हैं। बहुवो यदि, और अगर ज्यादा हो गए तो बोले त्रिचतुरा, तीन या चार होंगे। दो या तीन तो होते हैं, और ज्यादा हुए तो तीन या चार। ते पंचशा दुर्लभा, पांच या छह होना तो मुश्किल है। बोले अब इसमें समझ लो आप क्या अद्भुत बात है। इति विरलानाम सम्यक भावित चित्तानाम केशांचित पुंसाम। इस तरह बिरले जीव जिन्होंने सम्यक रूप से भावित कर दिया, कर लिया है अपना मन, कौन सी भावना से? वे तत्व की भावना से। ऐसे किन्हीं पुरुषों को धारणा, जीवादि तत्व धारणा, जीवादिक तत्वों की धारणा, धारणा का अर्थ कालांतरेण अविस्मरणम, जो भविष्य काल में भी अंदर रहे, मिट न जाए, भूल न जाए, इस प्रकार की धारणा उनको भवती होती है। नहीं तो फिर जैसे ही पर्याय छूटती है अपन सब भूल भाल करके बिल्कुल नए वातावरण में एकदम ऐसे उलझ जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने, मतलब नरकों में जीव कितना तड़पता है कि काश अब मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं आत्मा का कल्याण कर लूँ, बहुत हो गया संसार भटकते भटकते, बहुत दुख सह लिया। दुखी होता है तब ऐसा सोचता है, और जैसे ही दुख शांत होता है सब भूल जाता है, फिर मस्ती में आ जाता है, फिर उत्पात, फिर उल्टे सीधे काम चालू कर देते। तो तत्व की धारणा ऐसे बिरले जीवों को होती है जो इस प्रकार साधना करके ज्ञान ध्यान में तत्पर होकर उसकी भावना भाते हैं। धारणा उन्हीं की बनती है, हर कोई धारणा नहीं बना सकता। तो बिरले जन तत्व को सुनते हैं, बिरले उसको यथार्थतः जानते हैं, समझते हैं। सुनने के बाद समझना पड़ता है, सुना और नहीं समझा तो फिर बात छूट गई, अधूरी रह गई। सुना फिर समझा, और समझने के बाद उसकी भावना, भावना कैसी? हे को छोड़कर उपादेय को स्वीकार करके साधना करते हुए उसकी भावना करना, तब जाकर के विरलानम धारणा होती। उनमें भी कुछ ऐसे रहते हैं जिनको धारणा होती है, वो अगले जन्म में भी शुरू से संस्कारित रहते हैं। एक कथा तुंगभद्रा कन्या की आती है, आपने सुनी हो कभी, मौन एकादशी की कथा, मौन एकादशी व्रत की कथा सुनी? पौष कृष्णा एकादशी के दिन पार्श्वनाथ भगवान के और चंद्रप्र भगवान के जन्म कल्याणक के दिन और दीक्षा कल्याणक के दिन 11 वर्ष तक एक दिन के लिए 16 प्रहर का मौन रखा जाता है, और रात्रि जागरण पूर्वक सोया नहीं जाता। तो उस कन्या ने ऐसी विधि की थी जिसके परिणाम स्वरूप जब वो राजकुमार की पर्याय में आती है वो कन्या, तब संसार शरीर भोगों से बचपन से ही विरक्त, कोई उसकी रुचि नहीं, न राजनीति में रुचि है और न अपने अपने उम्र के जो विषय होते हैं उसमें कोई रुचि है, बस उसको स्वाध्याय में रुचि थी। फिर भी राजा बनने के बाद सारी घटना होती है, पूरी अच्छी सुंदर कथा है, हमें अभी समय याद है लेकिन कथा सुनाएंगे तो फिर समय थोड़ा सा ज्यादा खिसक जाएगा। अंत में वो जो मंत्री था मति सागर, वो षड्यंत्र करता है कि ये राजकुमार तो बहुत भोला भाला है, इसलिए इसको मारकर राज्य हथियाया जा सकता है, भले राजगद्दी पर बैठा हो लेकिन इसको कोई अकल नहीं है, इसमें कोई चतुराई नहीं है, ये राजनीति नहीं जानता, तो इसको नष्ट करके अपन अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन मंत्री का पुत्र इसका मित्र था, वो आकर के बता देता है कि ऐसा ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं पिताजी, तो फिर इनको राजा होने के कारण दंड देना पड़ता है उसको, और दंड देने के कारण इनको तो जो भी था सो था, लेकिन उसके अंदर वैर भाव बन जाता है, मर करके वो वंचर माने जंगली प्राणी बनता है, और इनको भी दीक्षा लेने के भाव हो जाते हैं, ये संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षा लेकर जब तपस्या करते हैं तब एक कथा आपने सुनी है वो सिंह शेरनी वाली, सुकौशल मुनि को शेरनी ने खाया था, और ये सुकौशल मुनि, इनका नाम भी सुकौशल था, इनको शेर ने खाया था। वहां वो व्याघ्री थी, धन्य धन्य जो सुकौशल स्वामी व्याघ्री ने तन खायो, आता है समाधि मरण में, और यहां पर ये शेर सिंह था, मतिसागर का जीव, और इसने इनको खाया, और उसे भव से वो केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करके संसार से पार हो गया। तो ये जो बात होती है पिछले जन्म का जो संस्कार वो इस जन्म तक साथ आता है, और फिर वो उसको फंसने नहीं देता, ये और दुर्लभ है।